جزاك الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. तो इस क्लास में हम सूरह यूसुफ की तफसीर पढ़ते हैं माफुल कुरान जिल्द नंबर 5 से, और इसमें इन आयात की तफसीर अभी चल रही है 7 से लेकर के 20 आयत नंबर आयत की। तो इसमें मारिफ मसाइल हम पढ़ रहे थे पिछले हफ्ते, हमने ये पैराग्राफ पढ़ा था, उसके तहत काफ़ी सारी बात हुई थी कि लोगों की नज़र में ये इत्तेफाकी वाकया था कि शामी काफिला रास्ता भूल कर यहाँ पहुंचा और उस गैर आबाद कुएं से साबता पड़ा, लेकिन राज कायनात का जानने वाला जानता है कि ये सब वाकयात एक मजबूत और मुस्तहकम निज़ाम की मिली हुई कड़ियां हैं। ठीक है, राज कायनात, कायनात का जो राज जानता है, ठीक है, ये क्या राज है? ये कोई राज ऐसा नहीं है कि सिर्फ यानी किसी को पता ना हो। ठीक है, अल्लाह ताला तो सब कुछ जानता है, लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला की बात नहीं हो रही है। ठीक है ना, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर अल्लाह के बंदों की बात हो रही है। ठीक है, वो अल्लाह के बंदे जो कि कायनात का राज समझ गए हैं। वो कायनात का राज कोई 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 केमिस्ट्री की कोई इक्वेशन नहीं है। वो कायनात का राज जो है ना, वो कोई एलजेब्रा या कोई जो है वो ट्रिग्नोमेट्री या कोई जो है वो न्यूरो साइंस या कोई रॉकेट साइंस, इस किस्म की कोई चीज नहीं है। कायनात का राज बहुत सिंपल है। कायनात का जो राज है ये बहुत सिंपल है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ठीक है ना, वो राज क्या है कि ये सब वाकयात एक मजबूत और मुस्तहकम निज़ाम की मिली हुई कड़ियां हैं। यूसुफ का पैदा करने वाला और उसकी हिफाजत करने वाला ही काफिले को रास्ते से हटाकर यहाँ लाता है। ठीक है ना, ये है कायनात का राज कि ये कायनात खुद ब खुद नहीं बनी, खुद ब खुद नहीं चल रही। ठीक है ना, इसका एक बनाने वाला है, इसका एक चलाने वाला है, ये है कायनात का राज, दैट्स इट। ठीक है, तो इतना आसान सा, इतना सिंपल सा, इससे ज्यादा सिंपल तो कोई और राज हो ही नहीं सकता, है ना, जिसको कहते हैं ना ओपन बुक एग्जाम, है ना, बिल्कुल ऐसा राज जो विच इज नॉट इवन अ राज, है ना। लेकिन अंधे को क्या सूझेगी, अंधे को क्या नजर आएगी? ठीक है ना, आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या आए नजर क्या देखे। ये जो अंधा है ना, आंख का जो कोरा है, ये क्या इसको नजर आएगा, ये क्या देखे। ठीक है ना, तो जिसको अल्लाह ताला ने आंख दी है, यानी जिसने जो है वो अल्लाह ताला को राजी करके ये आंख हासिल करी है, वो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत का बनाया हुआ ये तमाशा ऊपर से देखता है ना, और उसको फिर ये राज समझ में आ जाता है। बाकी जो है, जो गुनाहों की वजह से और अपनी हठधर्मी और जिद्द और अनानियत और इन सब की वजह से अंधे बने हुए होते हैं, तो अल्लाह ताला फिर उनको ये दीद नसीब ही नहीं करता, ये उनको दीद अता ही नहीं करता। ठीक है ना, फिर वो जो है ना, वो हर चीज का सिरा जो है ना, वो मखलूक में तलाश करते हैं, हर गुत्थी का सिरा वो मखलूक में तलाश करते हैं, चाहे वो उनकी जाती जिंदगी से मुताल्लिक कोई गुत्थी हो, उनके खानदान के मसले से मुताल्लिक कोई गुत्थी हो, या उनके जॉब से के मसले से मुताल्लिक कोई गुत्थी हो, या जो है वो दुनियावी उमूर वर्ल्ड इवेंट से मुताल्लिक कोई गुत्थी हो, वो हर चीज में मखलूक को ढूंढते हैं। मखलूक की वजह से ये हो गया, फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने वो कर दिया, उसने ऐसा किया, फिर उसको वो, और फिर उसके बाद उसका हल भी जो है वो मखलूक के पास ही तलाश करते हैं। ये अंधे लोग होते हैं। ये कौन होते हैं जी? अच्छा, इस क्लास में अंदर हमने चैट सिस्टम को थोड़ा सा शायद सेटिंग्स चेंज करी है एडमिन साहब ने, तो कोई जवाब अगर दे कि ये कौन लोग होते हैं जी, जवाब दे करके पता चल जाएगा कि आप लोगों की चैट डिसेबल तो नहीं हो गई कि आप जवाब ही नहीं दे पाए। सुबह को खवातीन की क्लास में ऐसा हो गया था। ठीक है, कोई एक टेस्ट अगर आपने खैर किया हुआ है, ठीक है, जो रात होने बाद, ठीक है, तो ये फिर अंधे लोग होते हैं, ठीक है ना। अब हम अपने आप को देख लें कि हम अंधों में से हैं कि हम बीना लोगों में से हैं। हमें अल्लाह नजर आता है कि हमें अल्लाह नजर नहीं आता, हमें सिर्फ जो है वो अल्लाह की मखलूक नजर आती है, ठीक है। तो हम अपने आप को देखें जरा गरीबान में झांक करके, और ये मसला जो है ना, अगर चेक करना है ना सही मानों में, तो पहले तो खानदानी मामला में देखें कि खानदान के मामला के अंदर जो है ना हमें अल्लाह नजर आता है या खानदान के अफराद नजर आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जाकर के गजा का मसला बाद में देखिएगा, ठीक है ना, कश्मीर का मसला और बैरूत का मसला और फलाने का मसला, ये बाद में देखिएगा, पहले अपने खानदान का मसला देखें कि उसमें अल्लाह नजर आते हैं कि अल्लाह नहीं नजर आता, बल्कि खाली जो है फुप्पियाँ चाचियां और मामियां नजर आती हैं, राइट। तो पता चल जाएगा कि हम अंधों में से हैं कि हम बीना लोगों में से हैं, ठीक है। तो आगे चलता है कि इसके साथियों को, उसके आदमियों को इस गैर आबाद कुएं पर भेजता है। यही हाल है उन तमाम हालात वाकयात का जिनको आम इंसान इत्तेफाकी हवादिस समझते हैं। आम इंसान यानी अंधे इंसान, ठीक है, तो इत्तेफाकी हवादिस समझते हैं, और फलसफे वाले उनको बख्त व इत्तेफाक कहते हैं। फलसफे वाले भी अंधे होते हैं, ठीक है ना, तो वो इनको बख्त कहते हैं और इत्तेफाक कहते हैं। ये अल्फाज हैं, बस थ्रोइंग अराउंड टर्मिनोलॉजीज, जो दर हकीकत निजामे कायनात से नावाकफियत पर मबनी होता है। नावाकफियत से हजरत ने यहाँ पे बड़ा एक सॉफ्ट सा लफ्ज इस्तेमाल किया, नावाकफियत। नावाकफियत ये नहीं होती, ये अंधापन होता है, ठीक है। अल्लाह ताला ने इनके नजरों के ऊपर पट्टी बांधी होती है, वरना सिलसिले तकवीन में कोई बख्त व इत्तेफाक नहीं है। ये बीना का कलाम है कि सिलसिले तकवीन में जो अल्लाह ताला ने निजाम बनाया, कुन फयकुन, हुक्म होता है अल्लाह का, उससे चीजें होती हैं, तो इसमें कोई बख्त नहीं है, कोई इत्तेफाक नहीं है, यानी कोइंसिडेंस इसके अंदर नहीं है। हक सुबहाना तआला जिसकी शान फ़आलुन लिमा युरीद है, मख्फी हिकमतों के तहत ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि ज़ाहिरी वक़ाए से उनका जोड़ समझ में नहीं आता, तो इंसान उनको इत्तेफाक हवादिस करार दे देता है, ठीक है। तो होता तो सब अल्लाह से है, लेकिन अब इसमें ना एक और दज्जाल के बारे में तो पिछली क्लास में बात हो चुकी थी कि दज्जाल जो है ना वो एक सूडो रियलिटी बनाता है। सूडो, इट्स नॉट रियल रियलिटी, लेकिन वो एक सूडो निजाम बनाता है जो कि अल्लाह के बनाए हुए निजाम को कॉपी करने की कोशिश करता है, ठीक है ना, कॉपी करने की कोशिश करता है। जैसे कि आप जो है ना वो इंसान के बदन का कोई निजाम है, किडनीज है फॉर एग्जाम्पल, तो आप एक आप जो है वो क्या कहते हैं उसको, उस मशीन को जिससे वो आर्टिफिशियल डायलिसिस, ठीक है ना, डायलिसिस मशीन जो है ये किडनी नहीं है, इतनी बड़ी सी किडनी, ठीक है ना, लेकिन वो किडनी को जो है वो सिम्यूलेट करने की कोशिश करती है, तो इट्स अ सूडो किडनी, इट्स नॉट द रियल किडनी, ठीक है ना, लेकिन फंक्शनैलिटी को वो ऐसे प्रेजेंट करती है जैसे कि वही किडनी है, ठीक है। उसी तरीके से अल्लाह का एक बनाया हुआ निजाम है जो कि असल निजाम है। दज्जाल जो है वो चूंकि अपने आप को खुदा के तौर पर प्रेजेंट करेगा, उसका जिंदगी का मकसद, उसके जहूर का मकसद कि वो खुदा बने और लोग उसको खुदा माने, ठीक है ना, तो अब उसने खुदा के निजाम को कॉपी करना या उसको सिम्युलेट करने की कोशिश करनी है। उसके बारिशों के जरिए से करे, ग्रेन सिस्टम्स, फूड सिस्टम्स के जरिए से करेगा, और जो है वो जो भी उसके बस में बनेगा, ठीक है, हेल्थ सिस्टम्स के जरिए से करेगा। उसी तरीके से जो जो रियलिटी वो दिखाएगा ना, वो रियलिटी जो है वो सूडो रियलिटी होगी, और इसके लिए जो है वो उसने उसके जो फोर रनर्स हैं, उससे पहले आने वाले जो लोग हैं, ठीक है ना, जो कि उसको रिसीव करेंगे जब वो जाहिर होगा अपने उस तहखाने जहां भी उसको बांध के रखा हुआ है फरिश्तों ने, ठीक है, तो उसको रिसीव करने वालों ने जो है वो ये सूडो रियलिटी दुनिया के अंदर पहले से बनाई हुई है। इसको कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है ना, इसको इंटरनेट कहते हैं, एंटर द नेट, ठीक है ना, हमारे हजरत कहते हैं एंटर इंटू द नेट, ठीक है ना। ये इसके लिए उन्होंने लफ्ज भी जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब का इस्तेमाल किया। वेब जो है वो मकड़ी के जाले के लिए इस्तेमाल होता है, और मकड़ी का जाला जो है वो इन अवहनल बयूत, सबसे ज्यादा जो बुरा घर है ना वो मकड़ी के जाले का, मकड़ी का घर होता है, ठीक है ना। अब उसके लिए जाहिर है इंसान को जितना पता होता है उसके हिसाब से ही वो बातों को समझता है। तो पहले जो है वो इंसानों के सामने मकड़ी के जाले की इतनी हकीकत थी कि जी ये जाला जो है ना ये सबसे कमजोर होता है, ठीक है ना, मकड़ी का घर जो होता है सबसे कमजोर होता है, और इवन हवा से भी टूट जाता है ना। बाकी जो घर होते हैं जैसे इवन जो जो टर्माइट होता है, जो जो वो जो लकड़ी को खाने वाली चीज होती है, ठीक है, दीमक, उसका घर भी जो है मजबूत होता है। चींटियों का घर भी जो है ना वो भी थोड़ा सा सॉलिड होता है, मकड़ी का घर उससे भी ज्यादा लाइट होता है, ठीक ठीक है ना। लेकिन हमने कहीं पे पढ़ा था, उसके बाद वो मुझे वो चीज मिली नहीं दोबारा, लेकिन पढ़ा तो था यकीनन, मुझे 100% यकीन है कि पढ़ा था। वो ये कि मकड़ी के घर जो बदतरीन घर अल्लाह ताला ने बयान फरमाया ना, तो उसके अंदर एक और हिकमत जो कि बाद में पता चली ये रिसर्चर्स के जरिए से, ठीक है ना। अल्लाह ताला काफिरों को भी इस्तेमाल करते हैं ना अपने कुरान की रियालिटीज को खोलने के लिए। तो रिसर्चर्स ने जो ये नेशनल ज्योग्राफिक टाइप के जो रीजन होते हैं, उन्होंने बताया जी कि ये जो मकड़ी जो होती है ना, इसमें जो फीमेल मकड़ी होती है ना, वो दरअसल जो होती है वो हाकिमा होती है। फीमेल मकड़ी जो है वो हाकिमा होती है, और वो जो है ना मेल मकड़ी से अपना काम निकलवाने के बाद उसको जो है ना वो मार देती है। मेल मकड़ी को जो है वो मार देती है, या मार के बाहर निकाल देती है, कतल ही कर देती है, ठीक है ना। अब ये चीज पहले इंसान को नहीं पता थी, लेकिन जब ये पता चली, और खास तौर पर कब पता चली, किस दौर में पता चली, जिस दौर के अंदर दुनिया में ये दज्जाली लोग जो हैं वो फेमिनिज्म फेमिनिज्म के दौर के अंदर पता चली। तो एक और हकीकत अल्लाह ताला के कुरान से खुल के सामने आई कि जो फेमिनिज्म, जो औरत, ठीक है ना, औरत जिस घर के अंदर गालिब होगी ना, और मर्द जो है वो मغلوب होगा, ये अवहनल बुयूत, ये सबसे बुरा घर होगा। और नबी अलैहिस्सलाम ने बात तो वैसे फरमा दी थी, ठीक है ना, जिस कौम की सरबरा जो है वो औरत हो गई, वो कौम कभी फलाह बहबूद नहीं पा सकती, राइट। ये हदीस तो सुनी होगी आप लोगों ने, है ना, जब पाकिस्तान में बीबी साहिबा बनी थी तो उसको भी बड़ी सुनाने की कोशिश करी थी हमें उलमाए कराम ने, लेकिन हमने सुन के नहीं दी थी, ठीक है। तो ये जो है ना वो इस तरीके से एक घर बनाता है, और सूडो सूडो रियलिटी बनाता है वर्ल्ड वाइड वेब के जरिए से। और ये जो सोशल मीडिया, अब मजे की बात यह है कि जब तक इंटरनेट था ना खाली, तो हजरत भी बोलते थे एंटर इनटू द नेट, और ये जो है वर्ल्ड वाइड वेब है, और जो है वो मकड़ी का जाला है, और सबसे बुरा घर है, और ये है ना। अब जब से ये सोशल मीडिया आया ना, तो फॉर सम रीजन वी हैव स्टार्टेड टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब। हम ये समझने शुरू हो गए कि इंटरनेट जो था ना वो कोई अलग चीज थी, और सोशल मीडिया कोई अलग चीज है, या ये कोई इंडिपेंडेंट है, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटरनेट। कहां से भाई, ये कहां से आप लेकर के आए कि सोशल मीडिया इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटरनेट है? भाई ये तो चलता है इंटरनेट के ऊपर है। अगर इंटरनेट बैकबोन को आप बंद कर दें तो क्या सोशल मीडिया चलेगा? राइट, सोशल मीडिया तो चलता ही इंटरनेट के जरिए से है। वाईफाई, वाईफाई क्या है, इंटरनेट ही का एक्सेस पॉइंट होता है ना आपका, ठीक है। तो भाई ये तो वही वर्ल्ड वाइड वेब है जिसको कि हम सोशल मीडिया के शक्ल में अब जो है वो रूशनास कराया गया है। तो इसके जरिए से जो है ना वो ऐसे रियलिटीज को पेश करता है कि जिसको कि हम असल असल रियलिटी समझ लेते हैं, लेकिन ये हकीकत में रियलिटी नहीं होती, और इसको जो है वो पीछे से कंट्रोल किया जा रहा होता है। हम समझते हैं कि नहीं, ये तो बड़ा इंडिपेंडेंट मीडिया है, और ये बड़ी पावर है, सोशल मीडिया की पावर के ऊपर बहुत सारे लोग जो है वो इस वक्त फरेफ्ता हुए हुए हैं, और समझ रहे हैं कि सोशल मीडिया के जरिए से जो है ना वो एक तहरीक चला लेंगे, और तहरीक चला करके जो है ना दुनिया के अंदर निजाम तब्दील कर देंगे, राइट, दुनिया के निजाम तब्दील कर देंगे, और जो है ना वो बुराई को अच्छाई से रिप्लेस कर देंगे, है ना। यानी क्या कहूं, क्या कहें उसको भाई, ठीक है। यानी उनका, उन्हीं के गुलामी में रह करके आप जो है ना वो उन्हीं का निजाम उन्हीं के जरिए से चेंज कर देंगे, यानी बेसिकली बेवकूफ बन बन के जो है वो फिर आप कुछ एकदम से अकलमंद बन जाएंगे, ठीक है। सोशल मीडिया जिहाद भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सही है। ये जो धोखा है, इस धोखे से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, या इस धोखे से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि इस वेब के बाहर जो असल दुनिया है ना, जो असल निजाम है, अल्लाह का बनाया हुआ निजाम, और अल्लाह का हाथ, अल्लाह की जो 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 कुदरत है, वहां तक नजर पहुंचे, वहां तक नजर पहुंचे। जब तक वहां तक नजर नहीं पहुंचेगी, उस वक्त तक धोखे में ही मुबतला रहोगे, उस वक्त तक तुम धोखे में ही मुबतला रहोगे, जब तक तुम इस सूडो सर्कल से, या सूडो वेब से, सूडो रियलिटी से बाहर नहीं निकल सकोगे, ठीक है ना। और मसला सारा का सारा यहीं पे आके अटक जाता है हमारा, कि वहां तक पहुंचने के लिए तकवा की जरूरत है। तकवा से जो है वो बुरहान मिलता है, तकवा से जो है वो फुरकान मिलता है, और हम तकवा के लिए बिल्कुल बिल्कुल तैयार नहीं है। बल्कि इसी सोशल मीडिया और इस इंटरनेट के जरिए से उन्होंने जो हमें रियलिटी दी है, हम उसी के तहत जो है ना वो हर चीज करना चाहते हैं, दुनिया भी उसी के तहत चलाना चाहते हैं, हत्ता कि हम दीन को भी उसी के तहत चलाना चाहते हैं। तो हम तकवा यानी खुद तो बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। तो हम यही कर रहे हैं कि अपने आप को बदल करके, गुनाहों को छोड़ करके तकवा इख्तियार करने की बजाय हम दीन को तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, है ना, भरपूर अंदाज से दीन को तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम जो है वो सूडो तकवा वाले अपने आप को प्रूफ कर सकें, है ना, कि भाई हमारा काम तो दीन के मुताबिक है। मसला ये है कि वो दीन तो 1400 साल वाला दीन नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम कुरान और हदीस वाला दीन नहीं है, बल्कि वो हमारा नया 21st सेंचुरी वाला दीन है, ठीक है ना। और हम उस दीन को बिल्कुल सही सही फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मुत्तकी हैं। लेकिन दिस इज नॉट रियलिटी, दिस इज धोखा, ये दजल है, ये फरेब है। और ये फरेब ऐसा है कि जो कि दज्जाल को आने की जरूरत नहीं है, बल्कि हर इंसान खुद अपने आप को दे रहा है, हर इंसान खुद अपने आप को ये फरेब दे रहा है कि वो जो है ना वो तकवा के मकाम के ऊपर फाइज है, क्योंकि वो दीन के मुताबिक अमल कर रहा है। लेकिन भाई कौन सा दीन, किसका दीन, ये नहीं पूछता वो, उसका अपना बनाया हुआ दीन, ठीक है। तो धोखे में ये भी एक, बल्कि ये एक बहुत बड़ा धोखा है जो कि हर इंसान को इस वक्त लगा हुआ है। तो इसी वजह से ना अपनी यानी अकल वकल तो दूर की बात, इल्म कुछ होता नहीं है, और जो है ना उसकी बुनियाद पर हम फैसले कर लेते हैं ये क्या सही है क्या गलत है। बहरहाल अल्लाह ताला के निज़ाम को देखने के लिए तकवा के अलावा और कोई रास्ता है नहीं, ठीक है। अच्छा, जो बड़े हैं, मुत्तकी हैं, बुजुर्ग हैं, उनका मसला क्या बना हुआ है? सूरह यूसुफ के अंदर हमने वो पहले पढ़ लिया था, जो बुजुर्ग है ना, बड़े हैं, हम उनको ये नहीं कह रहे कि वो, उनको भी नजर नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है दुनिया के अंदर, उनका मसला क्या बना हुआ है? सूरह यूसुफ के अंदर हमने पीछे पढ़ा था, कोई बताएगा अगर किसी को याद है वो? क्या बुजुर्गों को भी दुनिया हकीकत नजर नहीं आ रही, उनको भी जो है वो धोखा लग गया है, उनको भी बात समझ में नहीं आ रही? नहीं, बल्कि उनका मामला हजरत याकूब अलैहिस्सलाम वाला मामला है, ठीक है ना। वो मजबूर होए हुए हैं, मजबूर होए हुए हैं, जैसे याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों के हाथों मजबूर होए हुए थे। याकूब अलैहिस्सलाम किसी काफिर के हाथों मजबूर नहीं हुए थे, किसके हाथों मजबूर हुए थे? नहीं? कोई फिरौन के हाथ मजबूर हुए थे, कोई नमरूद के हाथ मजबूर हुए थे, किसी और किस्म की कोई बातिल कुव्वत के हाथ मजबूर हुए थे? नहीं, किसके हाथ मजबूर हुए थे? ईमान वालों के हाथ मजबूर हुए थे। और वो ईमान वाले कौन थे? सगे अपने अपने बेटे थे, सौतेले बेटे नहीं थे वो, उनके अपने बेटे थे। तो बुजुर्गों का भी यही होता है कि जब उनके करीब जो लोग होते हैं ना, वो उनको प्रेशर करते हैं, वो अपनी चाहत के मुताबिक, वो बड़ों की बात नहीं मान रहे होते। दूर से देखने को लगता है कि ये तो बड़े करीबी हैं, ये तो बड़े अच्छे हैं, ये तो उनकी बात मानते हैं, नहीं, वो अपनी चला रहे होते हैं। तो ऐसा मौका भी आ जाता है बड़ों के ऊपर कि उनको जो है ना फिर मसलहतन या हिकमतन या जो भी रीजंस होती हैं, उनको जो है वो गिवन करना पड़ जाता है, ठीक है ना। तो बड़ों से बदगुमान होने की हरगिज हरगिज कोई जरूरत नहीं है, ठीक है जी। कोई क्लियर ना हो बात तो पूछ लीजिएगा, आगे हम चलते हैं कि बहरहाल उनका आदमी जिनका नाम मालिक बिन दुबर बतलाया जाता है, उस कुएं पर पहुंचा, डोल डाला, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुदरत की इमदाद का मुशाहिदा किया, मदद का मुशाहिदा किया, उस डोल की रस्सी पकड़ ली, पानी के बजाय डोल के साथ एक ऐसी हस्ती का चेहरा सामने आ गया जिसकी आइंदा होने वाली अजमत शान से भी कतई नजर की जाए तो मौजूदा हालत में भी अपने हुस्न जमाल और मानवी कमालात के दरख्शा निशानात उनकी अजमत के लिए कुछ कम नहीं थे, ठीक है। यानी बात का तो किसी को नहीं पता ना सिवाय अल्लाह के, ठीक है, इन लोगों को बात का तो नहीं पता, लेकिन इनको तो जाहिरी तौर पर जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का चेहरा नजर आ रहा था, वही उनके जो है ना वो अजमत के लिए कम नहीं था। एक अजीब अंदाज से कुएं की गहराई से बरामद होने वाले इस कमसिन हसीन और होनहार बच्चे को देखकर वो पुकार उठा, मालिक बिन दोबर, या बुशरा हाजा गुलाम, अरे बड़ी खुशी की बात है, ये तो बड़ा अच्छा लड़का निकल आया। सही मुस्लिम में शबे मेराज की हदीस में ही में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिला तो देखा कि अल्लाह ताला ने पूरे आलम के हुस्न जमाल में से आधा उनको अता फरमाया और बाकी आधा सारे जहान में तकसीम हुआ है, ठीक है ना, इतना हुस्न था। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के हुस्न से ज्यादा नहीं था। हमने अपने हजरत से बड़ी प्यारी बात सुनी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे ना, उनका हुस्न जो था वो बहुत ही यानी खीरा कर देने वाला हुस्न था। जब भी जो औरतें थी ना, उन्होंने उनको देख करके अपनी उंगलियां काट ली थी, माहदा बश यानी इन हादा इल्ला मालिकुन करीम, है ना, ऐसा जो है ना वो खीरा پھیرا کر دینے والا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن اس سے بھی زیادہ اچھا تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن میں وہ ملیح حکم تھا, سالٹی, نمکین حسن جس کو کہتے ہیں. یہ جو نمکین حسن ہوتا ہے نا, یہ ایسا حسن ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر کے نا آنکھیں ہٹتی نہیں ہیں اس کے اوپر سے, آنکھیں ہٹتی نہیں ہیں اس کے اوپر سے, ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے اندر ویسا چونکہ وہ گلوریس پن نہیں ہوتا نا, ٹھیک ہے, جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے حسن میں تھا, اس وجہ سے اس کی حسن کی جو ہے وہ مشہوری نہیں ہوتی. بس کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے اس حسن کے بارے میں بات کرنے, جیسے صحابہ کرام نے, جیسے کچھ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کے حسن کے بارے میں بڑی بہترین کلام فرمایا. بہرحال, تو وہ اثر روح بضاع, یعنی چھپا لیا اس کو ایک مال تجارت سمجھ کر. مطلب یہ ہے کہ شروع میں تو مالک بن دعبر کی یہ لڑکا دیکھ کر تعجب سے پکار اٹھا, مگر پھر معاملے پر غور کر کے یہ قرار دیا کہ اس کا چرچا نہ کیا جائے, اس کو چھپا کر رکھے تاکہ اس کو فروخت کر کے رقم وصول کرے. اگر پورے قافلے میں اس کا چرچا ہو گیا تو سارا قافلہ اس میں شریک ہو جائے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ بہرحال قافلے کا یہ حصہ تھے, اور when you are part of a system, ٹھیک ہے نا, تو پھر آپ کو جو ہے وہ اس سسٹم کے سامنے گیون کرنا پڑتا ہے. سسٹم سے الگ کر کے ڈیڑھ اینٹ کی جدی مسجد آپ نہیں بنا سکتے, اگر بنائیں گے تو پھر آپ کو جو ہے وہ خارج کر دیا جائے گا, ٹھیک ہے نا. پھر سسٹم کا ایک پھر باقاعدہ ایک, ایک, ایک نظام حرکت میں آتا ہے نا, کہ بھئی آپ نے جو ہے وہ یہ کیا نظام سے ہٹ کر کے اپنا کیوں اپنا ایک چھوٹا سا نظام بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو اب اس کا ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ یا تو اپنے نفس کو مارو, اور جو چیز تمہیں پسند نہیں ہے اس کو طوعاً او کرہاً قبول کرو سسٹم کی, ٹھیک ہے نا. اور اگر تم جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتے تو پھر جو ہے وہ چھپاؤ, جھوٹ بولو, ٹھیک ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ راستہ کیا اختیار کیا, چھپانے کا, ٹھیک ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہ لگے, لگنے دو. تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ ہمیں زیادہ فائدہ حاصل ہو جائے گا. سسٹم سے ٹکرانا جو ہے وہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا, تو انہوں نے ٹکرانے کے بجائے چھپانے کا راستہ اختیار کیا. اور یہ کبھی خیر کی نیت سے بھی کبھی چھپانے کا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے, اگر سسٹم برا سسٹم ہو اور آپ کو جو ہے وہ نیکی کا کام کرنا ہو تو آپ جو ہے وہ آؤٹ رائٹ جو ہے وہ سسٹم کے خلاف بات نہ کریں, لیکن چھپ کر کے اور پوشیدہ طریقے سے سسٹم کے خلاف کام کرتے رہیں, ٹھیک ہے. جیسے نبی علیہ السلام نے قریش کے اندر ابتدا کے اندر ایسی چھپ کر کے کام کیا, خاموشی سے کام کیا. سیم وے اف یو آر پارٹ آف اے گڈ سسٹم یو آر فورسڈ ٹو اسٹے ان لائن, یو آر فورسڈ ٹو اسٹے ان لائن. ہاں, یہ یعنی اگر آپ اتنے نیک نہیں ہیں لیکن جو سسٹم آپ کا حصہ بن, آپ جس کا حصہ بنے ہوئے وہ اچھا سسٹم ہے, تو پھر وہ سسٹم آپ کو لے کر کے چلتا ہے, ٹھیک ہے. اب ماشاء اللہ ہم اجتماع پہ گئے, تین دن وہاں پر رہے ماحول کے اندر, تہجد کے نظام کے اندر, تو ماشاء اللہ جن سب نے تہجد پڑھی, ٹھیک ہے نا. اب جس کو نہیں بھی پڑھنی تھی اس نے بھی پڑھ لی, تو یہ سسٹم کا فائدہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ شروع میں تو مالک بن دوبر یہ لڑکا دیکھ کر تعجب سے پکار اٹھا, مگر پھر معاملے پر غور کر یہ قرار دیا کہ اس کا چرچا نہ کیا جائے, اس کو چھپا کر رکھے تاکہ اس کو فروخت کر کے رقم وصول کرے. اگر پورے قافلے میں اس کا چرچا ہو گیا تو سارا قافلہ اس میں شریک ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. یہ جو چرچا کرنا ہوتا ہے نا, جس کو کہتے ہیں آج کل جو ہے وہ وائرل ہونا یا مقبولیت عامہ کا حاصل ہو جانا, قبولیت نہیں مقبولیت, ٹھیک ہے نا, فیمس ہو جانا, لائکس مل جانا, ٹھیک ہے نا. یہ جو لائکس مل جانا اور جو چرچا ہو جانا جو ہے نا, اس کے بعد جو ہے نا وہ مفاسد جو ہیں وہ بہت تیزی سے آتے ہیں. مفاسد کہتے ہیں کسی چیز کو خراب کر دینے والی چیزیں, فاسد کر دینے والی چیزیں, ٹھیک ہے نا. تو بھائی نیکی کا کام کرنا ہے نا تو چھپ کے کرو وہ کام, ٹھیک ہے نا, چھپ کے کرو وہ کام, چھپ کے مت کرو. اگر چھپ کے کرو گے نا تو یو ول ہیو ٹو فیس کانسیکوینسز, ٹھیک ہے. اگر حکم مل رہا ہے اور وہ حکم بھی جو ہے وہ صاف تو کرو کہ کیا حکم ملا ہے, ٹھیک ہے نا, اپنی طرف سے جو ہے وہ حکم بنا لیا کسی چیز کا, تو چھپنے کا حکم نہیں ملا ہمیں, ہمیں چھپنے کا حکم ملا ہے. تو چرچا کرنے کے اوپر بہت سارے مفاسد آتے ہیں. پھر آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ ہمارے کراچی کے لینگویج میں کہتے تھے آڑو کر لینا کسی کو, آڑو کرنا سمجھتے ہیں کسی کو, آرام سے جو ہے نا وہ یعنی یوں کہتے ہیں نا وہ جیسے کوئی آپ نے کبھی اگر دیکھا ہو پولیس والے جو ہے نا, جو صحیح پولیس والے ہوتے ہیں امریکہ وغیرہ کے پولیس والے, وہ اگر کسی کرمنل کو پکڑتے ہیں نا تو بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ پیچھے مروڑ کر کے اس کو جو ہے نا وہ ہینڈ کفس لگا دیتے ہیں, ठीक है ना, यानी बिल्कुल जो है ना वो काबू में आ गया, अब ये कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो वही गोया के एक स्लैंग लैंग्वेज, एक स्ट्रीट लैंग्वेज के अंदर ना उसको कहते थे आड़ू करना। ठीक है ना, तो इसी तरीके से ये जो 30 मार खान किस्म के नेक लोग होते हैं ना, तो उनको आड़ू कर लिया जाता है बड़ी आसानी के साथ। ठीक है ना, बड़ी आसानी के साथ उनको जो है ना वो हैंडकफ्स जो है वो पीछे लगा दिए जाते हैं। अब जो है ना वो या तो बातिल का सिस्टम बनेंगे या फिर जो है ना वो फिर किसी काम के नहीं रहेंगे, यानी अच्छे काम के तो बहरहाल नहीं रहेंगे, या तो बातिल का काम के रहेंगे या फिर जो है वो किसी भी काम के नहीं रहेंगे, समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये शौक लगे हुए होते हैं हमें छपने के, हम जो है वो इससे अपने आप को बचाएं। आगे फरमाते हैं कि ये मानी भी हो सकते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हकीकत वाकये को छुपा कर उनको एक माले तिजारत बना लिया, जैसा कि बाज रिवायात में है कि यहूदा रोजाना यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में खाना पहुंचाने के लिए जाते थे। तीसरे रोज जब उनको कुएं में ना पाया तो वापस आकर भाइयों से वाकया बयान किया। ये सब भाई जमा होकर वहां पहुंचे, तहकीक करने पर काफिले वालों के पास यूसुफ अलैहिस्सलाम बरामद हुए, तो उनसे कहा कि ये लड़का हमारा गुलाम है, भाग कर यहाँ आ गया है, तुमने बहुत बुरा किया कि उसको अपने कब्जे में रखा। मालिक बिन दोबर उनके साथी सहम गए कि हम चोर समझे जाएंगे। उस जमाने में खास तौर पर लगता है कि ये चोरी वाला जो मसला है ना, ये बहुत ज्यादा जो है वो यानी इसके ऊपर बड़ी यानी बड़ी लाइमलाइट पड़ी हुई थी इसके ऊपर। ठीक है ना, चोरी, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाकये के अंदर जो है वो चोरी का बड़ा जिक्र आता है। ठीक है ना, कि अच्छा जिसने किसी का चीज चोरी की हो, अब वो उसकी सजा क्या थी कि वो उसका गुलाम बन जाएगा। ये बाकायदा याकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत थी, यानी उस जमाने का कानून था ये। ठीक है, तो ये लोग भी सहम गए चोरी का नाम सुनकर के। आजकल तो चोरी करना तो उसके बगैर तो हमारा काम ही नहीं चलता। ठीक है, खुसूस पाकिस्तान वगैरह के अंदर। ठीक है, तो हम चोर समझे जाएंगे, इसलिए भाइयों ने उनके खरीदने की से उनके खरीदने की बातचीत होने लगी। बच्चों की क्लास जो सीरत की क्लास होती है, उसके अंदर भी वाकया भी पढ़ा था गज़वा खैबर के बाद का, कि नबी अलैहिस्सलाम के गुलाम थे, तो वो जब आप की जो कुजावा था वो सवारी के ऊपर से उतार रहे थे, उनको दुश्मन का तीर आकर के लगा और इंतकाल हो गया। तो साहबा कराम ने बड़ी वो शहादत मुबारक हो, शहादत मुबारक हो, नबी अलैहिस्सलाम फरमाने नहीं, इसने जो है ना वो एक चीज, एक चादर जो है वो माल गनीमत में से चुराई थी, उस चादर का इसको अजाब मिलते रहेगा, है ना। हालांकि मैदान जंग के अंदर, यानी मैदान जंग से ही वापसी का वो सफर था और जिहाद की नियत से ही सब निकले हुए थे, और दुश्मनी का चीर तीर था जिससे कि वो शहीद हुए थे, लेकिन चोरी, तो इतना सहाबा डर गए कि एक साहब जो है ना वो जूते का तस्मा उन्होंने उठा लिया था, वो तस्मा लेकर के वापस आ गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, गलती हुई। ठीक है, तो अभी तो हम लोगों का माल या लोगों की चीजें उठा करके अपनी जेब में डालना और फिर उसको अपना हक समझ करके इस्तेमाल करना शुरू कर देना, ये बहुत ज्यादा ना हमारे कल्चर के अंदर ये चीज आम हुई भी है। अनलेस के कोई वीडियो कैमरा हमें देख रहा हो या कोई सिस्टम ऐसा हो कि जिसके ऊपर हमें वही नकद सजा का यकीन हो चुका हो, तब हम चोरी नहीं करते, वरना चोरी के बगैर रहा नहीं जाता हमसे। जिस तरह झूठ बोले बगैर रहा नहीं जाता ना, उसी तरह चोरी के बगैर हमसे रहा नहीं जाता। तो आयत के मानने ये हुए कि बरादरान यूसुफ ने खुद ही यूसुफ को एक माल तिजारत बना लिया और फरोख्त कर दिया। वल्लाहु अलीमुम बिमा यअमलून, यानी अल्लाह ताला को उनकी सब कारगुजारियां मालूम थी। मतलब ये है कि अल्लाह ताला शानहू को सब मालूम था कि बरादरान यूसुफ क्या करेंगे। ठीक है, अल्लाह ताला के पास इल्म अजली है, इल्म अबदी है, सब कुछ अल्लाह ताला के इल्म में है। तो और ये भी मालूम था कि उनसे खरीदने वाला काफिला क्या करेगा, और वो उस पर पूरी कुदरत रखते थे कि इन सब के मंसूबों को खाक में मिला दें, लेकिन तकवीनी हिकमतों के मातहत अल्लाह ताला ने इन मंसूबों को चलने दिया। ठीक है, यानी अल्लाह ताला की जो तकवीनी हिकमतें होती हैं कि जिसके अंदर के यूसुफ अलैहिस्सलाम का कोई कसूर नहीं था कि उनको इसकी सजा मिल रही थी। ठीक है, कसूर की सजा भी इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला दे देते हैं। ठीक है ना, लेकिन वो जो निजाम कहलाता है जिसमें कसूर की सजा मिल रही होती है, उसको तशरीई निजाम कहा जाता है। और जब कसूर के बगैर कोई मुश्किल मामला पेश आ रहा होता है, तो उसको तशरीई निजाम नहीं कहा जाता, उसको तकवीनी निजाम कहा जाता है, कि बस अल्लाह ताला की यही मर्जी थी, यही हुक्म था अल्लाह ताला। जैसे किसी किसी ने नेकी के काम का इखलास के साथ इरादा कर लिया और उसके लिए जो है वो शरीयत सुन्नत के मुताबिक जो है वो असबाब भी इख्तियार कर लिए, लेकिन वो काम कर नहीं सका, तो उसके ऊपर हम क्या कहते हैं भाई, अल्लाह की यही मर्जी थी, अल्लाह का यही हुक्म था कि ये वाला काम जो है ना वो होना नहीं था, आपने तो जो कर सकते थे वो आपने कर लिया, ठीक है, तो उसको तकवीनी निज़ाम कहते हैं। शुरू में तो आपने तशरीई निज़ाम को फॉलो किया, यानी अल्लाह का जो हुक्म था उसके मुताबिक आपने नेकी की नीयत करी, फिर उसके बाद शरीयत सुन्नत के मुताबिक उसके असबाब मुहैया करे, यहां तक आपने काम कर लिया, तशरीई निज़ाम के अंदर आपको सवाब मिल गया। सवाब और अजाब जो है ना तशरीई निज़ाम के तहत होता है, और जो उसके अलावा वाकयात होते हैं जिसमें के जो सवाब और अजाब नहीं होते उसको तकवीनी निज़ाम कहते हैं, ठीक है। तो इब्ने कसीर ने फरमाया कि इस जुमले में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी ये हिदायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम जो कुछ आपके साथ कर रही है या करेगी वो सब हमारे इल्म कुदरत से बाहर नहीं, ठीक है ना, यानी इस आयत के बारे में बता रहे हैं, वल्लाहु अलीम बिमा यअमलून, अल्लाह ताला को सब पता था वो लोग क्या कर रहे थे, ठीक है ना। तो जिस तरह उस वक्त सब पता था उसी तरह अभी भी तो सब पता है ना, ठीक है ना, और उसी तरह अभी भी के बाद फिर तभी भी, तभी भी का मतलब 2021 के अंदर अक्टूबर के अंदर जो कुछ हो रहा है ये भी सारा का सारा अल्लाह ताला को पता है, ठीक है, और इसके बाद क्या होने वाला है ये भी अल्लाह ताला को सब कुछ पता है। तो अगर हम चाहें तो एक आन में सबको बदल डाले, ठीक है ना, माशाल्लाह मस्जिदों के अंदर जो है वो कुनूत नाजला जो कि सुन्नत है, नबी अलैहिस्सलाम ने भी कुनूत नाजला पढ़ी थी एक महीने तक, जब वो हुफाज कराम साहब कराम साहब हुफाज साहब कराम को शहीद किया गया था, ठीक है, तो उस सुन्नत की इत्तबा के अंदर हमारा काम है कुनूत नाजला पढ़ना, ठीक है ना, लेकिन सिर्फ ना पढ़ना और भी बहुत सारे काम करना वो हम चले नहीं कर रहे, लेकिन कम से कम एक सुन्नत तो पूरी कर रहे हैं ना, तो इतनी दुआएं और इतनी जो है वो तमन्नाएं, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो बदल नहीं रहे, अल्लाह ताला की तरफ से फैसला नहीं आ रहा, लेकिन अल्लाह की कुदरत से ये बाहर नहीं हो गया, हरगिज हरगिज ये चीज अल्लाह की कुदरत से बाहर नहीं है, इनकी तो कोई हैसियत ही कोई नहीं है ना, इनका जो बनाए हुए निज़ाम है ये तो हकीकत इसकी वर्ल्ड वाइड वेब से भी ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो इस बात को हमने कभी भी इस बात से हमने गाफिल नहीं होना कि अल्लाह ताला चाहे तो एक आन में सबको बदल डाले, लेकिन तकाजाए हिकमत यही है कि इन लोगों को इस वक्त अपनी कुव्वत आजमाई करने दी जाए, है ना, यहूद बेबहबूद, यहूद बेबहबूद, ठीक है ना, जो कभी भी बहबूद इनको नहीं मिलेगी, तो तकाजाए हिकमत यही है कि इन लोगों को इस वक्त अपनी कुव्वत आजमाई करने दी जाए, और अंजाम कार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन पर गालिब करके हक को गालिब किया जाएगा, जैसे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ किया गया, ठीक है। तो इस्लाम तो गालिब आएगा, है ना, इस्लाम तो गालिब आएगा, लेकिन कब आएगा और किसके हाथ पर आएगा ये हमें नहीं पता, ठीक है, उसूली तौर पर हमें पता है कि अल्टीमेटली आएगा, कब का जवाब यह है कि अल्टीमेटली, कब का जवाब अल्टीमेटली यानी इवेंचुअली बिलाखिर इस्लाम गालिब आएगा, और किसके हाथों आएगा उसका भी हमें उसूली जवाब पता है कि ईमान वालों के हाथ आएगा, गालिब आएगा, ठीक है ना। अब हमारा काम है कि हम अपने आप को ईमान वाला तो बनाएं, ठीक है। अब ये बात जो है ना ये कोई आज 2021 के अंदर कोई थोड़ी आई है ये वाली बात, ये वाला उसूल, ये बात तो हर दौर हर जमाने में कुरान मजीद के अंदर ये सूरत जो है 1400 साल से मौजूद है कुरान मजीद के हुजूर के साथ, है ना, और हमारे अकाबरीन को हमसे ज्यादा इसकी समझ मौजूद थी, ठीक है ना, और हमारे अकाबरीन को ना सिर्फ ये कि कुरान मजीद के आयात की तशरीह बहुत अच्छी तरीके से मालूम थी, बल्कि जमाने के जो हालात हैं और जो आवाम के हालात हैं उनका भी उनको पता था, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने अपने दौर के अंदर जो असबाब उनके सामने मुहैया थे मौजूद थे उन्होंने जो है वो जद्दोजहद का रास्ता नहीं छोड़ा, ठीक है ना। अब जब ये बरतानवी इस्तेमार बरेसगीर के ऊपर गालिब आ रहा था बल्कि आ चुका था, ठीक है, तो उस वक्त जो है वो अहले हक चंद उलमाए कराम थे, उन्होंने जो है जब यानी जद्दोजहद आजादी शुरू करी, आपको पता होगा आजकल तो बहुत ज्यादा इसको सोशल मीडिया पे भी पढ़ा जाता है कि जी तहरीक आजादी की इब्तदाई उलमाए कराम ने करी थी, ये कोई मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने इसकी इब्तदा नहीं करी थी, ठीक है, तो उलमा को
को उस वक्त जो है ना वो ना सिर्फ ये कि मुसलमानों का हाल पता था कि मुसलमान इस वक्त जो है ना वो इस काबिल नहीं है कि अल्लाह ताला की मदद को जो है वो अपनी तरफ मुतवज्जे कर सके। और ये जो दज्जाली निजाम टेक ओवर कर रहा है ना, ये दज्जाली निजाम जो है वो हदीस मुबारका के अंदर इसका जिक्र मौजूद है, ठीक है ना। और ये टेक ओवर जो है ना ये अपने एक मंतकी अंजाम तक पहुंच करके ही खत्म हो, उससे पहले ये खत्म नहीं होगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने जद्दोजहद का रास्ता नहीं छोड़ा, ठीक है ना। शामली के महाज के ऊपर जो मशहूर आखिरी जिहाद था वो भी नहीं छोड़ा, तहरीक रेशमी रुमाल भी नहीं छोड़ी, है ना। और उसके अलावा जो इल्मी जद्दोजहद थी और दीगर जो है वो अकायद की हिफाजत की जद्दोजहद, वो सारी भी जद्दोजहद ही नहीं छोड़ी, ठीक है ना। क्योंकि उनको पता था कि भाई हम मुकल्लफ अपनी अपने अमल के मुकल्लफ हैं, हम दुनिया के हालात के मुकल्लफ नहीं है। ये दुनिया हमारी नहीं है, ये दुनिया हमारी नहीं है, ये जो इंसान है ना हमारे चारों तरफ, ये हमारे बंदे नहीं है, ये हमारे जर खरीद गुलाम नहीं है, ये अल्लाह के बंदे हैं। और ये दुनिया भी अल्लाह की दुनिया है। हमारा जो जो हम जिस चीज के मुकल्लफ हैं, जिस चीज के जिम्मेदार हैं, वो हमारा अपना अमल है कि तुमने जो है वो अपना काम किया कि नहीं किया। दैट्स इट। तो उन्होंने अपना काम किया क्योंकि उनको अल्लाह के सामने जवाब देने की फिक्र थी, उनको इस बात की फिक्र नहीं थी कि दुनिया के अंदर जो है ना वो अगर हमने दुनिया के निजाम को चेंज नहीं किया तो हम अल्लाह के नजदीक जो है वो मुजरिम ठहराए जाएंगे। नहीं, उनको पता था कि ये दुनिया के निजाम को चेंज करना हमारा काम ही नहीं है, ना ये हमारे बस में, ठीक है ना। लेकिन मेरे अमल के बारे में मुझसे सवाल होगा, ये चीज जो है ना वो मेरे बस में, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे ये इख्तियार दिया है कि मैं किस वक्त क्या करता हूँ, ठीक है। तो सबको जानबूझ करके हमसे बहुत ज्यादा अच्छी समझ रखने के बावजूद उन्होंने जो किया वो किया, ठीक है। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अकाबरीन उलमाए कराम जो है वही कर रहे हैं जो कि उनके बस में है और जिसका उनको अल्लाह ताला ने मुकल्लफ बनाया है ना। अब सोशल मीडिया पे तो सूडो रियलिटी है ना, और जो कि असल में जो है वो दुश्मनान दीन के हाथ में है ये सारा का सारा सिस्टम। सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं और जो है वो हमारे दिमागी निजाम को भी जो है वही कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से जो है ना वो शोशे छोड़ रहे हैं, शोशे हर वक्त शोशे, फतवा क्यों नहीं देते, फतवा क्यों नहीं देते, फतवा दो जी, फतवा दो जी, फतवा दो। आपके पास भी बहुत सारे इस तरह के मैसेजेस आए भी होंगे, ये जो है ना ये मुफ्ती साहब जो है, ये दारुल इफ्ता जो है, ये फतवा क्यों नहीं दे, फतवा क्यों नहीं देते। यकीन जाने कि ये जितने लोग ये काम कर रहे हैं ना, या तो ये बदनीयत लोग हैं या ये बदअकल लोग हैं। दो ही किस्म के लोग होते हैं, दो ही किस्म के बुरे लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो कि बदनीयत होते हैं, अकलमंद तो होते हैं लेकिन नीयत उनकी खराब होती है। वो दीन का जो नारा लगाते हैं ना वो दरअसल बदनीयती के साथ लगा रहे होते हैं। उनका नुकसान, उनकी नीयत होती है दीन को खराब करना, उनकी नीयत होती है दीन को नुकसान पहुंचाना। ऐसे लोगों को बदनीयत कहा जाता है। और दूसरे लोग हमारे जैसे होते हैं जो कि हैं तो बड़े अच्छे नीयत वाले, है ना। हम दीन को खराब करने की नीयत नहीं होती हमारी, हमारा हमारा ये यानी दिल में कोई इंटेंशन नहीं है कि जो हम जो है ना वो मदारिस को बंद करवा दें या जो है वो हम उलमा को फंसवा दें, ये हमारी नीयत नहीं है। लेकिन हमारी अकल खराब हो चुकी है, हमारी अकल खराब हो चुकी है गुनाहों की वजह से। अकल के ऊपर अल्लाह ताला ने पट्टी बांध दी है, ठीक है ना। तो हम जो है ना फिर अल्लाह का एहसान है कि मतलब हम कम अज कम इतना तो क्लेम कर सकते हैं ना भी कि नहीं कर सकते कि हम बदनीयत नहीं है लेकिन हम बदअकल जरूर हैं। हम उन बदनीयत लोगों की बातों में आ जाते हैं, है ना, और तालियां बजाना शुरू कर देते हैं, नारे मारना शुरू कर देते हैं किसी के हक में या किसी के खिलाफ, ठीक है। तो ये दोनों दोनों ही खराब लोग होते हैं, बदनीयत तो ज्यादा खराब होते हैं लेकिन बदअकल भी कम खराब नहीं होते, वो भी अच्छे खासे खराब होते हैं, ठीक है। तो भाई दोनों कैटेगरी से हमें निकलने की जरूरत है अगर हम अल्लाह ताला के सामने ना दोस्ती के साथ पेश होना चाहते हैं, दोस्त की शक्ल में पेश होना चाहते हैं। अगर हम बदनीयत या बदअकल कैटेगरी के अंदर सारी जिंदगी गुजारते रहे ना तो फिर कहीं हम कटहरे में खड़े ना कर दिया जाए और हमारे साथ जो है ना वो दुश्मन वाला सलूक ना कर दिया जाए, ठीक है। क्योंकि जो बेवकूफ होता है ना वो भी तो फिर दुश्मनों का ही एक आलाकार बन जाता है ना। जो बदनीयत होता है वो तो होता ही दुश्मन है, लेकिन जो बेवकूफ दोस्त होता है ना वो भी फिर दुश्मनों का ही आलाकार बन जाता है। तो जब दुश्मनों के आलाकार बन जाएंगे तो फिर कयामत के दिन अगर अल्लाह ताला ने कहा कि भाई तुम फिर दुश्मनों की कैटेगरी के अंदर खड़े हो, तुम दोस्तों की कैटेगरी के अंदर खड़े नहीं हो सकते क्योंकि तुम उनके आलाकार बने गए थे। किसने तुम्हें रोका था अपनी अकल को दुरुस्त करने से? किसने तुम्हें रोका था गुनाहों से तौबा करने से? किसने रोका था तुम्हें? अगर तौबा कर लेते मैं तुम्हारी अकल को खोल देता, मैं तुम्हारी जो 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 देखने की सलाहियत है ना उसको सही कर देता, लेकिन तुमने तौबा नहीं करी अपने गुनाहों से, है ना, लगे रहे अपने, अड़े रहे अपने गुनाह के ऊपर। तो अब जो है ना फिर तुम उनके साथ ही शामिल रहो। वशरहु बिथमनिन बख्सिन दराहिम मअदूदा, ठीक है, कि इन लोगों ने बेच दिया उसको यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत ही ना दराहे में मादूदा, बहुत ही गिने चुने दिरहमों के बस। फरमाते हैं कि लफ्ज शरा अरबी जुबान में खरीदने और फरोख्त करने वालों के दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, खरीदने और फरोख्त करने वाले दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। बै व शरा, वैसे तो बै जो है वो बेचने वालों के लिए और यानी बेचने के लिए, और इश्तरा जो है वो खरीदने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन अरबी में दोनों के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ भी दोनों माने का एहतमाल है। जमीर अगर बरादरान यूसुफ की तरफ आयद की जाए, यानी जो प्रोनाउन है वो हम कंसिडर करें कि वो बरादरान यूसुफ है, तो फरोख करने के मानी में होंगे कि इन्होंने बेच दिया बरादरान यूसुफ ने। और काफले वालों की तरफ अगर प्रोनाउन को आयद किया जाए, यानी जमीर को लौटाया जाए, पॉइंट किया जाए जमीर को, तो खरीदने के माने होंगे। मतलब यह है कि बेच डाला बरादरान यूसुफ ने या खरीद लिया काफले वालों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत थोड़ी कीमत, यानी गिनती के चंद दराहिम के मुआवजे में। ठीक है, क्या लिखते हैं आप, क्या ये बात सही है कि बेवकूफ आदमी के साथ अल्लाह की मदद नहीं रहती? बेवकूफ आदमी के साथ अल्लाह की मदद नहीं रहती। हम यहाँ पे बार बार एक बात कर रहे हैं कि वो बेवकूफ जो जिसने गुनाहों का दामन नहीं छोड़ा है ना, उसके साथ अल्लाह की मदद नहीं आती, क्योंकि गुनाहों के साथ अल्लाह की मदद नहीं होती, ठीक है ना। एक होता है सीधा साधा भोला भाला इंसान, ठीक है ना, जैसे कि मोमिन के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल मोमिनु गिर्रुन करीमुन वल काफिरु खब्बुन लईमुन। काफिर जो होता है ना बड़ा मक्कार और बड़ा इस किस्म का शातिर होता है, नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, और मोमिन जो होता है ना वो गिर्रुन करीमुन बड़ा भोला भाला सा सीधा साधा सा होता है। आप सहाबा कराम को उठा करके उनकी जिंदगी पढ़े ना, उनके आमाल पढ़े, उनके अफआल पढ़े, उसके अंदर जो है ना वो शातिर तबीयत वाले सहाबा कराम आपको नहीं मिलेंगे। जो कहते हैं ना वो एक्स्ट्रा स्मार्ट किस्म के दुनियावी एतबार से, है ना, बहुत ही ज्यादा, यानी जिसको श्रूट कहते हैं अंग्रेजी में, है श्रूट का जो लफ्ज है, कनिंग, ऐसे आपको सहाबा नहीं मिलेंगे। हाँ, हिकमत के मुताबिक और बड़ी जबरदस्त किस्म की हिकमत अमली वगैरह वो कुछ साबित होती है, जैसे खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला से साबित होती है, उन्होंने ग़ज़वा मौता के अंदर बड़ी हिकमत के साथ जो है ना वो विड्रॉ किया था, ठीक है ना। तो इस हद तक हिकमत और अकलमंदी, लेकिन एक होता है श्रूडनेस और कनिंगनेस, जो जिसको बल्कि कनिंगनेस का लफ्ज ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है ना। तो वो जो है ना जो जिसको कहते हैं ना जुबान का तेज होता है वो, और बेवकूफ बनाना जो है ना वो उसको आता है, इस किस्म के सहाबा कराम की आपको नेचर नहीं मिलेगी, ठीक है ना। एक सहाबी की जिंदगी में के हालात में थोड़ा सा करीब करीब मिलता है, जिससे कि थोड़ा अगर ईमान के साथ और नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के साथ थोड़ा सा कनिंगनेस टाइप की, यानी नॉट नॉट एग्जैक्टली कनिंगनेस तो नहीं कह सकते, जाहिर सहाबा कराम तो रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु है, ठीक है ना, लेकिन कुछ गुंजाइश निकल आती है ऐसे लोगों की। वो कौन से सहाबी हैं जिनकी जिंदगी के हालात में ऐसी चीज नजर आती है, लेकिन चूंकि अल्लाह की मोहब्बत, नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत गालिब थी, तो उनको फिर समझा जाएगा कि अल्लाह ताला ने ना फिर ऐसे लोगों के लिए गोया कि एक गुंजाइश निकाली है, क्योंकि हमारे लिए तो जो जो लीडर हैं वो सहाबे कराम है ना, वो हमारे गाइड्स हैं सारे के सारे, हमारे मिशनरी हैं। एग्जैक्टली, अमर इब्न अलआस रजी अल्लाह तआला, अमर इब्न अलआस रजी अल्लाह तआला, ठीक है ना। कम से कम मुझ फकीर को बहुत ही कम मुताले है मेरा, मुझे उनके अलावा कोई और नहीं नजर आता, ऐसा कोई और नजर नहीं आता। तो अमर इब्न अलआस रजी अल्लाह तआला गोया के हमारे लिए एक तो वो हो गई थोड़ी सी आसानी हो गई, क्योंकि हमारे यहाँ भी तो माशाल्लाह ऐसे बहुत है ना, ठीक है ना, जिनके अंदर बड़ी जबरदस्त किस्म की जो है ना वो आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा है, कुछ ज्यादा ही है बल्कि, ठीक है। और जो है वो जुबान का भी बहुत जबरदस्त किस्म का जो है वो है। तो भाई बेशक है आपके पास, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत अगर गालिब होगी तो ये चीज काबिले कबूल होगी, वरना नहीं होगी। और दूसरी बात यह है कि सहाबे कराम में अमर इब्न अल-आस जो हैं, ये लश्कर की अमारत तक तो ये आते हैं, लेकिन ये ना तो ये अशरा मुबशरा में आते हैं, अशरा मुबशरा में तो नहीं आते हैं, और ना जो है ये खुलफाए राशिदीन में आते हैं, ठीक है ना, और ना जो ना, यानी ये बेसिकली जो बिल्कुल सीनियर मोस्ट सहाबा होते थे ना, उनमें इनका इनका जिक्र नहीं है ये, यानी दिस इज लाइक है, ऐसे भी गुंजाइश है। तो भाई एक को लेकर के आप जो है वो सारी के सारी अपनी जितनी एफर्ट है, पाकिस्तानी कौम में बहुत ज्यादा शातरियत, राइट, तो आप एक सहाबी की बुनियाद पे आपने ये शातरियत को अपने अपने लिए जस्टिफाई कर लिया, व्हाट अबाउट ऑल द रेस्ट ऑफ द सहाबा जो कि गिर्रुन करीम उनके दर्जे के ऊपर फाइज थे, वो आपको क्यों नहीं नजर आते? आप सीधे साधे बन करके अल्लाह की मदद को जो है वो अट्रैक्ट करके अपना काम क्यों नहीं करवा सकते, राइट, बल्कि टेढ़े रास्ते से और यानी पॉलिटिक्स के जरिए से और जो है वो साजिशी अंदाज में जो है ना वो दीन का काम भी करना है ना, तो वो भी साजिशी अंदाज में करना है, राइट, अल्लाह उसके रसूल का काम भी करना है ना, तो वो भी जो है ना वो जोड़ तोड़ के जरिए से करना है। अच्छा, ऊपर सियासत वाला अगर करे तो भाई समझ में आती है, सियासत है ही इस चीज का नाम और जरूरत है उसके अंदर, क्योंकि पूरी की पूरी आपने जो है वो एक रिसोर्स मैनेजमेंट करनी होती है हर किस्म के। नहीं, हम तो लोएस्ट लेवल के ऊपर जाकर के ये वाला काम कर रहे होते हैं, शातरियत वाला काम, कनिंगनेस वाला काम, और बजाय जो है बड़ा दीन का काम, मतलब दीन वाले हैं भाई। तो भाई गुरुन करीमन किधर चला गया, कहाँ चला गया ये गुरुन करीम? हर चीज के अंदर जो है ना वो इतनी देड़ होशियारी को घुसेड़ने की हमें जो एक लत लग गई है ना, ये इंतहाई नुकसानदेह चीज, और इसी लत की वजह से आज हम दीन को बदलने वालों में हमारा ज्यादा पार्टिसिपेशन हो रही है, बजाय इसके कि दीन के तहत चलते, है ना, दीन के मुताबिक अपने आप को बनाते, हम दीन को अपने मुताबिक बनाने, क्योंकि वही एक्स्ट्रा स्मार्टनेस गालिब आ गई है इस वक्त, ठीक है, तौबा करनी चाहिए सर, इतना स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, कहते हैं अल्लाह को भी कुछ करने दो भाई, सब कुछ तुमने ही करना है सारा का सारा काम, अल्लाह का दीन है, अल्लाह के दीन, अल्लाह को अपने दीन की हिफाजत करने दो ना, ठीक है ना, तो वो करो जो कि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के हुक्म को क्यों नहीं फॉलो करते, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अल्लाह की मदद को क्यों नहीं शामिल हाल करने की कोशिश करते? सारी की सारी इंटेलिजेंस जो है ना वो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ में इस्तेमाल हो रही है, अल्लाह के हुक्म के रास्ते में जो है वो तो एक रिवायती चीज रह गई है सारी। कुर्तुबी ने फरमाया कि अरब तुजार की आदत ये थी कि बड़ी बड़ी रकमों के मामला वजन से किया करते थे, और छोटी रकमें जो 40 से ज्यादा ना हो उनके मामला गिनती से किया करते थे, इसलिए दराहिम के साथ मादूदा के लफ्ज ने यह बतला दिया के दराहिम की मेदार 40 से कम थी। इब्ने कसीर ने बरिवायत अब्दुल्ला इब्ने मसूद लिखा है कि 20 दिरहम के बदले में सौदा हुआ, 10 बड़ा भाइयों ने दो दो दिरहम आपस में तकसीम कर लिए, तादाद दराहिम में 22 और 40 दिरहम की भी मुख्तलिफ रवायतें मनकूल हैं। तो इसमें कोई इतनी तफसीर की जरूरत नहीं है, अगर आपने नहीं समझा तो दोबारा इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा, और फिर आखिरी पैराग्राफ पढ़ के फिर जान छोड़ते हैं आपकी। वकानु फीही मिन अज़्ज़ाहिदीन, ज़ाहिदीन ज़ाहिद की जमा है जो जुहद से मुश्तक, जो जुहद के लफ्जी मानी बेरगबती और बेतवज्जुही के आते हैं, मुहावरात में दुनिया की माल दौलत से बेरगबती और एराज को, मुहावरात में दुनिया की माल दौलत से बेरगबती और एराज को कहा जाता है, ठीक है ना, यानी आम बोलचाल के अंदर जुहद का जो लफ्ज है ना वो दुनिया से तवज्जो को हटाना, इसके मानी में इस्तेमाल होता है। मानी आयत के ये हैं कि बरादरान यूसुफ इस मामले में दरअसल माल के ख्वाहिशमंद नहीं थे, उनका असल मकसद तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाप से जुदा करना था, इसलिए थोड़े से दराइम में मामला कर लिया, ठीक है, यानी दे स्टक टू देयर पर्पस, जो उनका गोल था, जो उनका मकसद था ना, वो डीरेल नहीं हुआ, ठीक है ना, ये भी उनके यानी एक होता है कि बेशक इंसान गुनाह के अंदर मुबतला हो जाए, गुनाह की वजह से जो है वो मेजर ब्लंडर्स कर जाए, जैसे कि उन्होंने वो कुर्ते वाला मामला किया था, मेजर ब्लंडर था, ठीक है, लेकिन ऊपर से कुछ जीन्स में भी तो चीजें आती है ना, ये इंतशार, ठीक है ना, डिस्ट्रैक्शन में मामला, तो इनमें ऐसा नहीं था, ये डिस्ट्रैक्टेड नहीं हुए, इन्होंने अपना जो मकसद था बस वही मकसद पूरा किया, और ये नहीं कहा चलो चलो ये भी हासिल कर लेते हैं, चलो लगे हाथों जो है ना वो माल भी समेट लेते हैं, ऐसा इन्होंने नहीं किया। ठीक है, कोई सवाल हो या कोई कमेंट हो तो आप यहाँ पे पूछ लें, क्लास का टाइम तो ज्यादा होते हैं, अगर आपके पास कोई सवाल होगा तो हम लोग रुक सकते हैं इसके लिए। ठीक है, चले लगता है कोई सवाल नहीं है तो क्लास खत्म करते हैं। वाफ दावाना अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम।